ओम शांति। तो आज की वाद विवाद की इस कड़ी में हमारे पास दो ग्रुप है। एक ग्रुप है, तो आपका ग्रुप है बैठा बैठने वाला, ठीक है, और ये ग्रुप है चलता फिरता रमता योगी। तो दो ग्रुप्स में डिस्कशन होगा, डिबेट होगी। तो सबसे पहले बैठा हुआ योगी, अर्थात कि बैठकर योग करने का क्या महत्व है और बैठकर योग करने से क्या क्या फायदे होते हैं और बैठकर योग करना ही चाहिए, ये है बैठे हुआ सिटिंग योगी। दूसरे है मूविंग योगी, अर्थात रमता योगी, चलते फिरते योगी। तो इनका कहना है कि योग बैठ के नहीं करना चाहिए, चलते फिरते होते रहना चाहिए हमेशा। तो डिबेट को चालू करते, पहले अपनी तरफ से अपना पॉइंट रखेंगे उधर बैठा योगी चिमन भाई, ग्रुप लीडर।
ओम शांति। तो आज हम योग की चर्चा करते हैं। जब योग का नाम लेते हैं तो कितना ही शांत और खुशी होती है, एक मन में और तन में एक शांति आ जाती है। तो हमारा ये योग है शांत चित्त और निर्मल, जिसमें हमारा तन भी शांत हो जाए, मन भी शांत हो जाए, उसको योग कहा जाता है। तो योग की परिभाषा बहुत गुह्य है। जितना ही हम बैठ करके योग करते हैं तो हमें अतीन्द्रिय सुख का आनंद होता है। तो अतीन्द्रिय सुख का आनंद चलते फिरते नहीं होता है, लेकिन एकदम शांत। बाबा कहते हैं शरीर का क्या एक पलक भी बंद नहीं होनी चाहिए, उसको योग कहा जाता है। ओम शांति।
तो ये हो गया बैठा योगी, अभी चलता फिरता योगी का पक्ष।
ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि तुम अभी राजयोग सीख रहे हो, क्योंकि भगवान आके तुम्हें पढ़ा रहे हैं राज्य भाग लेने के लिए। तो हमें बैठकर योग करना, हमें करना। तो हमें चलते फिरते योग भी बहुत जरूरी है। जैसे हमारा गीत बना है, मुरली से गीत बना, कुछ गीत बना, बाबा कहते कि तुम्हारे लिए ही बना है। तो हम क्या गीत में गाते हैं कि चलो करे हम शेर रूहानी, चलो करे हम शेर, हाथ में हाथ दिए बाबा का, चले कर हम कर शेर। तो चलते फिरते स्थूल में भी हमको चलते फिरते करना होता है। हम चलते फिरते क्या कहते हैं, हम कहते तू तो यही कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नहीं नजर लेकिन साथ साथ हो। तो हम चलते फिरते वो करने में हमें मजा आएगी।
चलो अभी डिबेट चालू करते हैं। सिटिंग योगा योगी ग्रुप अपने अपनी पॉइंट्स बोलना चालू करेंगे।
जब योग का नाम लेते हैं तो अमृत वेले योग कहा जाता है। तो अमृत वेले कोई चलते फिरते योग नहीं करते हैं, एकदम शांत एक कोई जगह फिक्स करते हैं जहाँ पर बैठ करके हम योग करते हैं। तो उसमें हमें बहुत ही अतीन्द्रिय सुख का आनंद आता है। और बाबा कहते जो विकर्म विनाश होगा वो बीज रूप स्थिति से होगा। तो बीज रूप स्थिति का अभ्यास है, वो चलते फिरते नहीं होता है, लेकिन एकदम शांत स्वरूप एक जगह बैठ कर योग करते हैं, उसको वो अनुभव होता है।
कर्मयोग के बारे में बाबा ने बताया, जास्ते समय हमें कर्मयोग में रहना पड़ता है, समय भी जास्ते समय कर्मयोग में रहते हैं हम लोग कार्य व्यवहार में, इसलिए चलता फिरता योगी महत्व है, बैठकर समय दे नहीं पाते हम।
ओम शांति। बाबा ने कहा एक बार कोर्स कर लिया फिर आपको कहीं भी जाके योग आप कर सकते हो। जहां रही विक्रम भस्म करने की बात, तो जरूरी नहीं वो बैठे बैठे, वो तो सारी बुद्धि की बात है। बुद्धि का कनेक्शन बाबा से जुड़ा तो विक्रम तो कहीं भी भस्म हो सकते हैं।
ये हमारा जो योग का पुरुषार्थ है भगवान से बुद्धि को लगाने का, तो लंबे समय से हमारा मन बुद्धि यहाँ भटक रहा था, तो बाबा कहते हैं अपने मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए पहले बैठ करके ही आपको योग अभ्यास करना पड़ेगा, इसके बिना मन बुद्धि आपका एकाग्र नहीं हो सकता है, इसलिए बैठ करके योग करना आवश्यक है, अति आवश्यक है।
इसमें बुद्धि भटके इसमें हमारा क्या दोष हो, तो आपका अपना दोष है, बाबा का ज्ञान भूला, बुद्धि तो हमारे हाथ में है।
देखिए जब पहले कोर्स किया है तो बहन जी ने सबको बिठा के कोर्स किया है, ऐसा चलते फिरते कोई इस कोर्स किया ही नहीं, और जब भी रियलाइजेशन की बात हुआ सभी बोला जे सब लौकिक संबंध छो बुद्धि से हटा के अच्छी तरह बैठो, तो पहले दिन से हमें बैठकर योग भी सिखाया, और योग बैठ के करेंगे तो दूसरा का भी प्रभाव हुआ, ये कोई बैठा हुआ है इसको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करे तो वो भी शांत होता है, हमारा भी मन हमारा जैसा शांत होता है हमें देखकर दूसरे प्रभाव पड़ता है। चलता फिरता जो योग जो करते हैं लोग जाके उनसे बातें करने शुरू कर देते हैं, कैसे हो ठीक हो, दूसरी बातें बातें में लग जाते हैं, वो दिखाता है ये साइलेंस लगा हुआ है तो उसमें मन डिस्टर्ब होता है, इसीलिए बैठ कर योग करना ही श्रेष्ठ है।
चलते फिरते योग करने से सर्व संबंध का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि कर्म क्षेत्र में सर्व संबंध का अनुभव कर,
उन्होंने बोला है कोई डिस्टर्ब नहीं करता, इस पॉइंट का खंडन करो।
उन्होंने कहा कि बैठकर कोर्स कराया, जब बैठकर आपको सेंटर में कराया, घर से तो आप चलकर आए ना, बहन जी ने घर में नहीं कराया, तो चलकर आप कोर्स की जिज्ञासा आपके घर से चालू हो गई थी।
सागर भाई इधर से।
योग को कहा जाता है कि जब कछुआ है ना वो अपना कर्म इंद्रियों को कैसे समेट कर लेता है, उसके बाद योगी माना हर कर्म इंद्रिया को एकदम शांत हो जाता है तो उसमें उसका अनुभव होता है, ऐसे चलते फिरते वो अनुभव नहीं होता है। जो अनुभव करने का जो समय है वो अमृत वेला और नुमा शाम है, तो नुमा शाम और अमृत वेला कोई चलते फिरते योग नहीं करते हैं।
ओम शांति। ऐसा है कि चलते फिरते अगर योग करते हैं, जैसे कि ऐसा नहीं बैठ के अनुभव होगा, अगर चलते फिरते भी करते हैं तो भी उसमें अनुभव हो सकता है, नहीं तो बैठ के भी करेंगे तो जरूरी नहीं है अनुभव, उसमें भी बहुत बुद्धि भटकती है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है छोटी छोटी बात में डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, तो ऐसे समझते कि चलते फिरते, क्योंकि लास्ट जो है वो हमें हमेशा टाइम नहीं मिलेगा कि हम बैठ के इतना समय कर सके, चलते फिरते भी करेंगे तो वो कर्म में ऐड होता जाएगा, तो हमारा टाइम भी बचेगा कि जिसमें हमें कर्म भी हो जाएगा और योग भी हो जाएगा, बैठने में कर्म नहीं है केवल योग है।
बाबा ने कहा है कि 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा सर्विस करो और 8 घंटा योग करो। जो योग का हमारा जो टाइम है वो सुबह और शाम का है, तो जो सुबह का समय और शाम का समय है उसमें हम बैठ करके योग करते हैं। अगर जो अनुभव करने का जो समय है, कहते एक संकल्प में स्थित होना है, वो चलते फिरते नहीं होंगे, लेकिन एक संकल्प में स्थित होना है और ये गुण का एक शक्ति का अनुभव करना है तो वो जब बैठ के करते हैं तभी वो अनुभव होता है, और उसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव बैठ के होता है, चलते फिरते नहीं होता है।
फिर बाबा क्यों कहते हैं कि निरंतर योगी बनना है, ये तो हम 4 घंटा 8 घंटा ये हम रखेंगे एक हद में ला लिया है, ऐसा हो जाएगा ना, बाबा कहते हैं निरंतर योगी बनना है तो उसका क्या। इन्होंने बोला कि सुबह शाम योग करना है उसमें अनुभव कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन बाबा ने कहा निरंतर योगी बनना है, रमता योगी बनना है आपको, तो वो 4 घंटा 8 घंटा करने का हम रखते हैं सुबह शाम, फिर दिन भर भी कर्म करते रहे और शाम को सुबह शाम योग करके खत्म करें, यही धंधा निरंतर योगी करना, निरंतर योगी बनना है तो हमको चलते फिरते भी सारा दिन कर्म करते भी याद योग करना जरूरी है, तभी हम 4 घंटा 8 घंटा मना हम हद में लेके आए, हमको 24 घंटा निरंतर याद श्वासोश्वास याद करना है तो चलते फिरते भी करना पड़ेगा।
ये तो आपने बाबा की एक बात पकड़ ली है कि बाबा ने कहा चलते फिरते हमेशा कंटिन्यू योग करना है, लेकिन क्या आप बैठ करके योग का आपको अनुभव होता है? यदि आपको बैठ करके ही योग का अच्छा अनुभव नहीं होता है तो चलते फिरते आप योग कैसे करेंगे? इसलिए बैठ करके योग करना अति आवश्यक है।
मैंने कहा है जब भी टाइम मिले टेव डालो, आदत बैठ के ही आदत नहीं, हम चलते फिरते भी आदत डाल सकते हैं।
तो टाइम कहाँ से निकालेंगे? जब कार्य व्यवहार पूरा होगा तभी तो आपको टाइम मिलेगा बैठ कर योग करने के लिए, और उसका ही महत्व है।
हाँ हाँ, ओम शांति। अभी हमने सुना कि टाइम कहाँ मिलता है जो आप करेंगे चलते फिरते, इसलिए बैठ के ही करना है। लेकिन बाबा एक बात और भाई जी ने बोला कि बाबा ने का बात पकड़ लिया है, हमको किसका बात पकड़ना है? बाबा का ही तो बात पकड़ना है, इसलिए तो चलते फिरते ही करना जरूरी है।
योगी का नाम है जो योगी, जितना भी हमने आज तक चित्र देखा है सब बैठा हुआ है और उससे ही उसका प्रभाव निकलता है, यह योगी है। चलते फिरते का योगी का आज तक नाम ही नहीं सुना है।
चलते फिरते योगी का चित्र आपने नहीं देखा है, लेकिन वास्तव में हमारा जीवन ही योगी है, तो क्या हम हमेशा बैठ के ही रहेंगे क्या? इसीलिए जीवन योगी होना चाहिए। सोने में भी योग, उठने में भी योग, स्नान में भी योग। ऐसा नहीं कि हम बाबा के रूम में से कहीं बैठ गया और योग किया, योग नहीं हुआ। चलता फिरता योगी ही योगी है।
ओम शांति। जैसे चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी को स्थिर चाहिए, इसी तरह से परमात्मा को परम धाम में देखना है तो मन बुद्धि को स्थिर चाहिए, ना कि हिलना डोलना नहीं चाहिए। इस तरह से बिल्कुल स्थिर चाहिए, तभी हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं।
सागर मतलब चंद्रमा को पानी में देखने के लिए पानी को स्थिर चाहिए, तो यहाँ पे मन की स्थिर की बात की गई है, न कि शरीर के। इसीलिए हम चलते फिरते भी मन को स्थिर करते हैं।
जब हम शरीर को स्थिर करेंगे तभी भी मन स्थिर होगा, नहीं तो नहीं हो सकता।
योग जो है वो जरूरी नहीं है मन जो बैठे बैठे स्थिर होता है। मन तो चलते चलते, जैसे किसी की याद में आशिक माशूक का चलते चलते वो माशूक की याद में कैसे खो जाते हैं, मन कैसे स्थिर होता है, फिर मन बुद्धि क्यों नहीं भटकता है? वो तो आपने भी अनुभव किया होगा। अब आपका मन बुद्धि भटकता तो हमारा क्या दोष है इसमें? ये तो सारे मन की बात है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बाबा कहते हमेशा याद करो।
जब फोटो खींचते हैं तब कैमरा को स्थिर करना पड़ता है, अगर कैमरा थोड़ा हिलता डुलता है फोटो भी ठीक नहीं आते हैं। अगर शरीर आपका हिलता डुलता रहेगा तो बुद्धि योग कहाँ स्थिर होंगे, कहाँ परमधाम होगा? आप तो दुनियादारी देख रहे हैं, मूवी भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, और कहाँ आपका मन टिकेगा?
ये योग सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। आप स्थूल सूक्ष्म में बात करो, ये तो मन की बात है।
ओम शांति। हमारे योग का जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य ये है कि हमारी 63 जन्म की जो पाप के संस्कार है उसको भस्म करना है। उसके लिए बैठक योग जरूरी है। जैसे कहा गया है कोई आग में कोई चीज डाला जाता है, वैसे आग जलता है जो चीज से खात निकल जाता है। ऐसे आत्मा के अंदर जो संस्कार कड़े संस्कार है उसको भस्म करने के लिए हमें योग अग्नि की प्रज्वलित करना है, और उसके लिए बैठक योग जरूरी है।
अग्नि की बात रहेगी तो सूर्य जब चलता है सूर्य एक स्थान पर होता है, लेकिन आदमी चलता चलता उसकी धूप से तपता रहता है।
नहीं,
तो हम भी परमात्मा ज्ञान सूर्य है, हमारा बुद्धि अगर है तो योग हम तो चलते चलते भी हो ही जाएंगे।
एक्चुअली जो साइंस यही कहता है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी, जिस पृथ्वी के ऊपर हम अवस्थान करते हैं वो पृथ्वी चलायमान है। इसलिए देखने में तो सूर्य चलता है, लेकिन जो योगी है उसको स्थिर रहना पड़ेगा और मन बुद्धि को स्थिर करेंगे तो भी हम परम धाम में बाबा को बाबा की याद में रहेंगे और बुद्धि को टिका सकेंगे।
बोलता प्रकृति को भी तुम शांत करने के लिए हमको योग करना है, तो हम प्रकृति को जिधर जाए उधर हम प्रकृति को पानी के पास पहुंचे, हम पानी को शांत करें वाइब्रेशन से और हवा को वाइब्रेशन से शांत करें, तो हमें चलता फिरता योग करना बहुत जरूरी है।
योग हमारा है बुद्धि योग है, तो ये घूमना फिरने की बात नहीं है। जब हम बुद्धि से, बाबा एक बार यहाँ भूकंप हुआ था तो बाबा ने कहा बुद्धि से चले जाओ वहां पर, पूरे ओम शांति भवन में सभी एकदम पिन कोड साइलेंस हुआ। जब सुखधाम में जब हम थे, मैं जगदीश भाई थे, तो भूकंप आया तो मैं भाई साहब बोला क्या हो रहा है, सब हिल रहा है, तो बोला बैठ जाओ, ये नहीं कहा भागो भागो, ये नहीं कहा। जब आपका तन एकदम शांत है, मन शांत है, तभी आपकी बुद्धि एकदम बाबा की तरफ लग सकती है।
मतलब
ऐसे घूमने फिरने में कोई बुद्धि नहीं लगती है।
परिस्थितियों का निर्माण हुआ तो आपकी बुद्धि क्या कर रही थी, उसके पहले क्या कर रहे थे? जब भूकंप आया तो आपकी बुद्धि क्या कर रही, उससे पहले क्या कर रहे थे?
कर्म योगी है ना, जो कर्म तो करते हैं, लेकिन बाबा कहते जो तुम्हारा योग का टाइम है वो फिक्स है, लेकिन योग लगाने के लिए तुम्हारी बुद्धि एकदम एकाग्र करने के लिए बैठ जाना है, तभी आप
तो
परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
परिस्थितियां आई तो अपने आप के कर्तव्यों की जागृति हुई, उसके पहले विस्मृत थे क्या? माने देखिए, जो आप कह रहे हैं कि बैठे बैठे भूकंप आए तो बाबा ने कहा वहां चले जाओ, लेकिन बाबा ने हमको ये बताया कि परिस्थितियां तो अनेक आएंगी, लेकिन उससे पहले अपने को मजबूत बनाने के लिए अपने मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है, तो उसमें ऐसे नहीं हमको बैठ के बनाना है। परिस्थितियां तो हमको चलते चलते भी आ सकती हैं, तो क्या उस समय हम बैठ के तुरंत वो काम पाए तो हम बैठ के ही वो करेंगे?
जीवन में परिस्थितियां तो आएगी, लेकिन जब हमारा वो अभ्यास है, वो हमारी स्थिति है, तो हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उस विजय प्राप्त करने के लिए, हमारी स्थिति बनाने के लिए हमें अमृत वेले और नुमा शाम का बहुत अभ्यास जरूरी है।
सारे दिन में क्या करेंगे फिर?
सारे दिन में जो कर्म करते हैं, कर्म तो करना ही है,
जो करना पड़ेगा,
लेकिन कर्म करते हैं लेकिन उसमें जो हमारी बुद्धि जितनी लगनी चाहिए, एकाग्र होनी चाहिए, वो एकाग्र नहीं होगी। एकाग्र बुद्धि के लिए बैठ के योग करना बहुत जरूरी है।
हाँ, बाबा ने कहा जो बैठे बैठे योग के लिए सारे दिन की दिनचर्या आपका टेंशन रहेगा तो बैठे बैठे योग ठीक लगेगा, अदरवाइज वो भी ठीक नहीं लगेगा। बैठे मेडिटेशन में और भटकरी बुद्धि इधर उधर।
ओम शांति। कभी दादी जी ने कहा था कि याद योग और तपस्या, तो जो पाप कर्म विकर्म भस्म होंगे वो तपस्या करने से ही होंगे, जिसके लिए एक जगह पे बैठना पड़ेगा। दादी जी ने कहा था तपस्या मना आप एक दीवार के सामने बैठे हो और आपने ऐसा आधा घंटा भी योग किया तो आने जाने वाले उस दीवार से भी आकर्षित होंगे। माना तपस्या में इतनी पावर है, आप चलते फिरते कितना भी योग करते रहो कहाँ पर आपके वाइब्रेशन तो दिखाई नहीं देते, वहाँ बैठकर आप योग करेंगे, इसीलिए मधुबन का गायन है, इसीलिए लोग यहाँ आकर बैठकर तपस्या करते।
बाबा ने कहा तुम चलते फिरते सेवा केंद्र हो, बैठे बैठे सेवा केंद्र नहीं, चलते फिरते आपको अनुभूति करानी है। और जब दादी जी ने समर्पित किया तो सबसे पहले समझाया जाता है कि आपको सेवा के लिए समर्पित किया, तपस्या के लिए नहीं, सेवा ही तपस्या है, जीवन ही तपस्या है, जीवन ही चलती फिरती लाइब्रेरी है।
जीवन तपस्या है, लेकिन सेवा केंद्र भी जब कब बनता है? जब वहाँ बैठकर तपस्या करे। जब दादी जान की पूना में थी, स्टूडेंट उस समय इतने नहीं थे जितने अभी है, तो दादी जी ने क्या किया, सेंटर के अंदर बैठकर एक एक चित्र के सामने बैठकर दादी जी ने ऐसे समझाया उन दीवारों को कि जैसे हजारों को दादी समझा रही है। तो उस सेवा केंद्र, उस स्थान का महत्व तब बढ़ा जब एक जगह पर बैठकर दादी जी ने प्रैक्टिस की।
दादी जी पूना में गई थी, सेवा नहीं था, बैठ के चित्र पुस्तक है, उस समय सेवा नहीं था तो चलो बैठा, लेकिन वास्तव में चलते फिरते ही हमें ऐसी अवस्था बनानी है। ऐसे सेवा नहीं तब तो बैठे ही हैं, कुछ काम नहीं तो चलो बैठे हैं। दादी ने लंदन में दीवार को समझाया, दीवार को कहा कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, उस समय सेवा नहीं थी,
कोई बात नहीं तो बैठ गया, लेकिन वास्तव में तो योगी जीवन माना चलते फिरते योगी, ऐसा नहीं कि बैठ गया दीवार को वाइब्रेशन दे दीवार से शक्ति मिलेगा, हम चलते फिरते भी करते तो दीवार से वाइब्रेशन आएगा, इसीलिए चलते फिरते बहुत बहुत जरूरी है।
देखिए परिस्थिति की बात उठाया था हमारे पांडव भवन में, हाँ इसका भी खंडन कर रहा हूँ, जो पांडव भवन में एक बार बहुत सारे घनश्याम हुआ था बाहर का इधर, तो बाहर से कोई आदमी आए थे, दादी ने तब प्रकाशमणि दादी ने सबको मेडिटेशन हॉल में योग में बिठा दिया और उसी टाइम वो जो आए थे उनको ले आया, ले आने के बाद देखा जे ये सारे सब योगी बैठा है, यहाँ कोई घनश्याम का कोई बात नहीं होता है, उन्होंने राइट साइन कर दिया और सब हमारे समाप्त जो परिस्थिति था सब विघ्न समाप्त हो गया, और उन्होंने बोला बैठ चलते फिरते योग भी करना है। अच्छा उसी टाइम हम चलते फिरते योग करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो दूसरों को प्रभाव क्या पड़ता है,
घूमते रहते हैं योग में बैठ के सोते रहते हैं उसका क्या।
हाँ देखिए योग में बैठ के जो सोते रहते हैं उसका अपना डिफिकल्ट है, कोई परिस्थिति के कारण उसका हो रहा है, उसको योगी नहीं बोलते हैं।
बाबा ने बोला है तुम चैतन्य दिलवाड़ा हो, चलते फिरते भी अपने को साक्षात्कार बाप का साक्षात्कार करा सकते हो, स्वर्ग का साक्षात्कार कर सकते हो, विनाश का साक्षात्कार करा सकते हो, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि मन परिस्थिति आई तो बैठ के योग किया तब समस्या समाधान हो गई। अगर जब हम बैठ जब दादी ने कहा और हम योग में बैठे थे वहां पे अगर 50 लोग सोया रहता तो देखने वाला क्या देखता, इसीलिए माना नहीं तो चलते फिरते भी आप साक्षात्कार करा सकते हैं, अपनी अनुभूति करा सकते हैं, साइलेंस में वॉक करेंगे तो देवता दिखाई देंगे आपकी तरफ से और आप वो परिस्थिति समाप्त हो जाएगी।
चलते फिरते जो योग करते हैं वो स्टार्टिंग स्टेज है जैसा कच्चा स्थिति बोल सकते हैं, और जो बैठक करते हैं वो पक्के, जैसे बच्चे होते हैं उनको अगर खाना खिलाना तो कुछ एक जगह में बिठा के खिलाए तो कुछ भी नहीं खाते, अगर चलते फिरते हैं तो ही खाते हैं, जो थोड़ा मैच्योर्ड होते हैं वो लोग एक जगह में बैठ के करते हैं, मतलब स्थिति एक तरफ हो जाते हैं।
तो बाबा पैदल लेके जाते थे क्लास के बाद, उसका क्या तो बाबा फिर ये क्यों बोलते कि चलते फिरते तुम्हारे से साक्षात्कार होगा, चलते फिरते योग करो।
जब बैठकर योग करेंगे तभी तो ना चलते फिरते साक्षात्कार होगा, आप बिना योग के ही निकल पड़े तो कोई देखेगा नहीं आपको, बोलेंगे देखो ये योगी का चेहरा देखो इधर उधर भटक रहे।
बाबा ने कई जगह बोला है कि जो आपके गुण प्रत्यक्ष होंगे वो कर्म योग से होंगे, आप सुनाने से या बैठ करके जितना भी योग कर लो प्रभाव कर्म का पड़ता है, आप 2 बजे उठते हो या 3 बजे उठते हो या सोते ही नहीं हो, लेकिन कर्म में आपका कैसा योग है उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर हम मीरा को भी देखें तो उसके कर्म योग का ही ज्यादा गायन है, उसके बैठक वाले योग का गायन नहीं, जितने भी ऋषि मुनि बैठक वाले उनका इतना गायन नहीं है, वो ज्यादातर क्रोधी निकले, जितने भी कर्म योगी रहे भक्ति में मीरा ये सब वो सब प्रत्यक्ष है, इसीलिए बाबा ने मीरा को नंबर 1 बोला है भक्ति में। और यहाँ पे जितनी भी हमारी दादियां मम्मा ये सब ने भी कर्म योग को ज्यादा महत्व दिया है, अगर सेवा अगर योग का समय तो उस समय कर्म पहले आ गया तो कर्म को उसमें इन्वॉल्व किया है, क्योंकि कर्म में रहेंगे तो संस्कार सहज बन पाएंगे, अगर बैठे हुए योग में रहेंगे तो वो कच्चे रहेंगे, कर्म में जब तक नहीं आएंगे तब तक वो योग संपूर्ण नहीं होगा।
ओम शांति। योग जो है हम बैठक योग या जो स्थिति पहले हम बनाते हैं बैठ के ही हम अपना स्थिति बनाते हैं, इसके बाद उस स्थिति के प्रभाव के द्वारा हम चलते फिरते योग कर सकते हैं, लेकिन बैठक योग हम करें ही नहीं और हम कहें चलते फिरते योग कर लेंगे ये संभव नहीं है। और बाकी हमारी जो 4 सब्जेक्ट है ज्ञान योग धारणा और सेवा, तो ज्ञान हम सुनते हैं पढ़ाई पढ़ते हैं बैठ के ही करते हैं, योग भी बैठक ही किया जाता है, और ज्ञान योग की द्वारा ही हम जो धारणा करते हैं उस धारणा के द्वारा भी हम सेवा करते हैं। सेवा जब हम निकलते हैं तो ज्ञान योग हमारे अंदर वो धारणा हो तो भी हम कर्म योगी बन सकते हैं। इसलिए बैठक जो होती आवश्यक है।
कोई माँ होती है वो अगर अपने बच्चे को याद करती तो उसने कहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके सीखा नहीं है कैसे बैठना है, कैसे याद करना है, अभी याद करना है या बाथरूम में याद करना है, किचन में करना है, घर में करना है। संबंध जोड़ा वो अपने कर्म करती रहेगी और उसके पीछे दीवानी भी हो जाएगी, हर चीज करेगी। यहाँ इसी जगह बाबा अगर किसी का संबंध में मिसाल देता है तो आशिक और मासूक का, वो भी कहीं जाके सीखते नहीं है कि हमें कैसे आशिकी करनी, कैसे याद करना है।
बात
करते भी वो चीज आ जाती है।
बात ये है कि अभी अभी मैं दिल्ली से आया हूँ, हमारी एक छोटी बच्चे हैं तो माँ उनको खिलाते पिलाते तो है, लेकिन मैंने कहा वो 2 साल के बच्चे हैं, कहते हैं उसको हम स्कूल में भर्ती करा रहा हूँ। कहना क्यों 2 साल के बच्चे स्कूल में क्या भर्ती कराना है ना, उन्होंने इसे बैठना सीखने के लिए एक अलग स्कूल बना हुआ है, उस स्कूल में हम उनको बैठा रहा हूँ। क्योंकि छोटे बच्चों के साथ कैसे बैठते हैं उठते हैं उसको ट्रेनिंग देने के लिए अलग से एक स्कूल है।
स्कूल का है, यहाँ सूक्ष्म की बात है। बहुत सारे लोगों में जो मोह आया या विकार है वो कहीं से सीखा किसी ने, ऑटोमेटिकली करते करते कर्म करते करते तो विकार बढ़ गए, कहीं से सीखना तो नहीं पड़ा ना किसी को।
नहीं, वो तो ड्रामा अनुसार हमारे 63 जन्म की जो धीरे धीरे संस्कार विकारों का संस्कार बना है। अभी योग का मतलब यही है कि हमें आत्मा को सत प्रधान बनानी है, विकार मुक्त होना है, इसीलिए वो कड़े संस्कार को हमें निकालना है, कड़े संस्कार को भस्म करना है। मैंने पहले भी बताया था योग अग्नि के द्वारा है, कोई भी चीज अग्नि में डाला जाता है अग्नि में तो भी उसका खात निकलता है, ऐसे चलते फिरते खात निकल नहीं सकता है।
अभी भाई जी ने बताया कि माँ बच्चे को कहाँ कहाँ से याद करती है, तो शिव बाबा मेरी माँ है वो तो मुझे याद कर रही है और मुझे दुखी देखकर ही वो नीचे आई है। लेकिन बच्चे को माँ कब याद आएगी, जब बच्चा माँ की गोद में जाएगा, और गोद में जाने के लिए माँ जब बैठी है आके और मैं बाहर भटकू तो मैं कमरे में जाकर मेरी माँ के सामने बैठूंगा तभी तो वो मुझे कुछ देंगी, प्राप्ति या होंगा और तभी मैं उस माँ को याद करूंगा। नहीं तो फिर माया मौसी तो बाहर बैठी है टॉफी लेके, चलो बच्चा इधर चले उधर चले घूमे फिरे, तो माँ की गोदी में बैठना बहुत आवश्यक है।
वो तो ठीक है पर निरंतर तो कर्मयोग से होता है ना, लगातार तो हम बैठे कितना देर से कर सकता है, माँ तो हर समय पर नहीं रहता है ना।
कमलेश भाई बोला श्री बाबा हमारी माँ है और माया मौसी टोपी लेके खड़ी है, तो श्री बाबा हमारी माँ है तो कहाँ पे लिखा है कि तू बैठ के ही श्री बाबा की माँ के गोद में जा सकते हो? माना हाँ गोद में ले जाते ना, चलते फिरते भी तो हम माँ की गोद में जा सकते ना, ऐसा थोड़ी है कि तुम बैठ जाओ तभी माँ की गोद में जाओगे नहीं तो माया मौसी खा लेगी। माया मौसी तो बहुतों को जो इससे पहले वाले भी हमने उसमें बताया था कि जो बाबा मम्मा को एडवाइस देता था लाता था संदेश वही माया मौसी के गोद में चली गई, और जो संदेश नहीं लाया जो बैठ के नहीं योग किया एकदम कर्म योग से अपने जीवन को परिवर्तन किया और यज्ञ को इतना फुलाया फुलाया वो आज भी अभी है हमारे पास। इसीलिए चलता फिरता योग बहुत बहुत जरूरी है।
ब्रह्मा माँ का यादगार है हमारे पास जो, और मम्मा का भी यादगार है, तो मम्मा और बाबा के पास कोई भी कैसा भी तूफानी आ जाता था लेकिन जैसे ही बाबा और मम्मा को देखते थे तो एकदम शांत हो जाता था। तो ये योग का प्रभाव है, जब हमारे जीवन में योग का प्रभाव नहीं है तो चंचलता हमारी खत्म नहीं होती है। तो चंचलता खत्म करने के लिए हमें एकदम अपनी अवस्था बनानी है, और अवस्था बनाने का जो समय है वो अमृत वेला है और वो बैठ करके है।
तो सभी दादियों को बाबा ने क्या बोला, तुम मधुबन में बैठ के खाओगे तो कहाँ से आएगा, जाना तो होगा ना। बाहर निकलना पड़ेगा, तो हम नहीं चल फिर के बाहर कैसे निकलेंगे? बाहर नहीं चलेंगे तो हमारा मधुमन में कुछ आएगा ही नहीं, इसलिए चलता फिरता बहुत जरूरी है। दादियां चल फिर कर गए।
देखिए जो भट्टी जब होता है, भट्टी भट्टी अभी भी चल रहे, सब जो भट्टी वाले आते हैं, हाँ चल रही है तो सब तो भट्टी करते टाइम वो चलते फिरते कोई योग करता है ऐसा देखा? भट्टी करते टाइम में ऐसे चलते फिरते योग करते कभी देखा है? जब सारा साल हमारा चलते फिरते होता है तो दादी क्या बोलते हैं, बैठ के तपस्या करो, दो दिन हो, पांच दिन हो, सात दिन हो, 21 दिन हो, बैठ के भट्टी करो। आप उसको टाइम भी मुकर करता है। हाँ,
आप जब भट्टी कर रहे होते हैं, जब साकार देते हैं फरिश्ता बनकर, तो पुरुषम परिक्रमा करते हैं, तो बैठ के तो चल के देते हैं ना, तो भट्टी भी चल रही है, इसलिए बैठे बैठे भी
चलता नहीं।
आप अगर बैठे हैं तो भी मन बुद्धि के द्वारा पूरे संसार की परिक्रमा करते, मन बुद्धि से चल रहा है आपका,
तो वो तो एक शरीर पे एक जगह बैठा हुआ है ना। यहाँ हमारा टॉपिक है जब बैठे रमता हुआ बैठा हुआ योगी या चलता फिरता योगी, बुद्धि हमारा कहीं भी चले, बुद्धि तो परमधाम भी चलता है तो
कहीं
नहीं बुद्धि तो किंतु लेकिन सब जगह हटा के तो हमारा तो बुद्धि योग कनेक्शन बाबा से जुड़ता है ना, तो ये तो शरीर तो बैठा हुआ है, शरीर तो घूमता नहीं। और भट्टी करते टाइम लोग तो ऐसा चलते चलते भट्टी नहीं करते हैं,
कि आपका मन बुद्धि आपके हाथ में नहीं है जो आपको बैठना पड़ रहा है, ये तो कमजोरी की निशानी आ गई। चलता फिरता योगी तो जिसका मन बुद्धि शक्तिशाली वो तो कहीं भी कर सकता है।
योग को एकाग्रता कहा जाता है, जब हमारी एकाग्रता होती है तभी हमारा बुद्धि योग एकदम शांत हो जाता है।
और अभी चलो ये यहाँ पूरा हुआ, अभी अभी ग्रुप चेंज होगा, अभी ये वाला जो ग्रुप है पूरा ये बन गया है चलता फिरता योगी, और ये जो ग्रुप है अभी ये है सिटिंग योगी, अभी डिबेट चालू। तो पहले सुशील भाई की तरफ से आप है बैठा योगी, हाँ तो बैठा ही योग करना है, और आप है अभी चलता फिरता योगी, तो चलते फिरते ही करना है योग। चलो ग्रुप
डिबेट चालू। जब संस्था की स्थापना हुई 1936 में, 14 साल बाबा ने जो तपस्या कराई वो बैठ के कराई है, चलते फिरते नहीं कराई।
बाबा ने कहा है कि तुम रमता योगी हो, यानी ये नहीं कि बैठ करके तुम योग करो, बैठ करके हम योग कितना देर तक कर सकते हैं? ज्यादा देर तक नहीं कर सकते ना, इसलिए कर्म योगी बहुत जरूरी है।
ये तो आपकी गलती, आप नहीं कर सकते, आप अपने को शक्तिशाली बनाओ, आप क्यों नहीं कर सकते? इसलिए बैठो, प्रैक्टिस करो।
आठ घंटा कोई बैठ नहीं सकता,
कर्त करता भी आज के जड़ में थी सुजान, एक कहावत गलत हो जाएगी फिर।
आठ घंटा बैठ नहीं सकते, आठ घंटा हम कर्म योगी बन करके ही याद कर सकते हैं।
आठ घंटे के यहाँ 18-18 घंटे हमारे पास रिकॉर्ड है, मधुबन वासी बैठ के तपस्या करते थे।
वो तो हठ योगी हो गया।
आपने बताया कि स्थापना की बात, तो बाबा ने वहाँ तो वो छोटे छोटे बच्चे थे, किसी को भी बाबा ने बिठा के नहीं रखा है, बाबा क्लिप्टन पे लेके जाते थे, कभी बाबा उनको सतयुगी पोशाक पहनाते थे, उन्हें भविष्य भी दिखाते थे और बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है वो सब भी। ऐसे नहीं कि सभी को कमरे में बंद कर दिया था 14 साल, ये तो चल फिर के बाबा ने दिखाया, क्लिप्टन दिखाया, वहाँ की फोटो है, हमारे पास प्रूफ है।
जानकी दादी ने बोला जो बैठ के अभ्यास नहीं किया वो कभी चलते फिरते नहीं किया।
अभी जब हम गीत गाते हैं तो कैसे बाबा के गीतों में झूम जाते हैं, अतीन्द्रिय सुख का आनंद का अनुभव करते हैं, तो हमें चलते फिरते योग में प्रवीण होना है, हमें कर्म योगी कहा जाता है, ये बैठा योगी नहीं कहा जाता है। तो कर्म योगी का बहुत बड़ा महत्व है। ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने सबको सिखाया कि कैसे हमें, देखो बाबा कर्म करते थे, गोबर का गोला बनाते थे, सामने कोई आया तो देखा तो बस साक्षात्कार हो गया।
तो बाबा ने आपको जब योग सिखाया तो कैसे चलते फिरते बैठा के दिया था ना, आधार तो हमारा बैठे बैठे ही है।
बहुत सारे प्रमाण है, बैठे बैठे योग करते टाइम नींद में सो जाते हैं, इसीलिए चलते फिरते जब योग करते हैं हमारा कर्म इंद्रिय एकदम चंचल सचल रहता है और हमारा बुद्धि एकाग्र भी होता है। इसीलिए भक्ति में भी उदंड नाम 24 प्रहर अष्टम प्रहर 5 दिन 8 दिन ऐसा लगातार चलते फिरते मृदंग बजा के योग करते रहते हैं, इसलिए चलता फिरता योग भी श्रेष्ठ है।
हाँ, ग्लोब पर बैठ के सकाश देने के लिए बाबा कहते हैं, बैठ कर ग्लोब पर बैठ कर विश्व को, विश्व कल्याण करी बनना है तो विश्व के ग्लोब के ऊपर बैठ के सकाश देने, बैठ कर बोला, चलते फिरते नहीं।
आप कार्य कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तखन बैठने का समय नहीं है, तब आप योग छोड़ देंगे क्या?
नहीं छोड़ेंगे नहीं, लेकिन तो आप 24 घंटे चलेंगे आकर तो बैठेंगे, फिर बैठ के क्या करेंगे, सो जाएंगे, तो योग तो करना पड़ेगा। बाबा ने कहा निरंतर योगी बनना है तो आपको बैठे बैठे भी करना पड़ेगा।
लेकिन आप बैठेंगे कितने समय तक?
बैठेंगे सदा काल बैठ सकते हैं, अंत में आते हैं शांति धाम में बाबा के सामने बैठ जाएगी। कितना समय बैठेगी, कैसे बैठ जाएंगी, ऊपर जाएगा पहले से प्रैक्टिस बैठेंगे
आधा घंटा पौना घंटा।
जो बोला परम धाम में बैठ जाएंगे, परम धाम में आपका शरीर है क्या? यहाँ तो हमारा, यहाँ तो चलता फिरता योगी या बैठा हुआ योगी।
रात को जब हम भट्टी करते हैं तो रात को कभी चाल फिर कर घूम फिर कर नहीं होगा, भट्टी बैठ कर ही करेंगे।
हमें पक्का योगी बनेंगे तो चलते फिरते हम अनुभव करेंगे परमात्मा का, तभी हम पक्का योगी बनेंगे, ना कि बैठ करके।
अच्छा, इस ज्ञान, इस जो हम मार्ग चुने हैं जिस पे चल रहे हैं वो सहज राजयोग कहा जाता है, लेकिन इतना सहज है? इतना सहज है जितना सहज राजयोग बोलते हैं? ये तो कठिन से कठिन महाकठिन राजयोग है। इसके लिए बैठ के ही संस्कार को डालना पड़ेगा, चलते फिरते नहीं हो सकता है।
ये सब डिस्कस हो रहा है बैठने का चलने का, क्या फिर तो क्या सिर्फ बैठने का ही काम करेंगे, क्या चलने का काम नहीं करेंगे? क्या हमको भूख लगी है, कहीं जाना है तो क्या बैठे ही रहेंगे? हम योगी है,
यहाँ पे खाने की और बैठने वो बात नहीं करनी, यहाँ पे तपस्या करके अपने संस्कार को परिवर्तन करना, इसीलिए हमें बैठ के ही एकदम स्टाम्प लगा।
अगर योग बहुत अच्छा तो थाली पाने अपने पास ही अपने आप जाएगी। पुराने जमाने में साधु निषाद जंगल से घर नहीं जाते थे, उनके पास लोग आ जाते थे भोजन के लिए, तो अगर हमारा योग ठीक है तो भोजन अपने आप आ जाएगा। आपका योग कच्चा इसलिए भोजन आता नहीं।
तो योग ठीक है तो फिर बाहर कैसे कर सकते हैं? बाहर की दुनिया जो भटक रही है, फिर कैसे हम जाके उनकी सेवा करें?
ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि का निर्माण किया, संकल्पों से सारे संसार को परिवर्तन करना।
जो भाई साहब ने बात की है वो सन्यासियों के लिए बाबा ने कहा, बच्चे वो सन्यासी लोग जो योग करते हैं उनके लिए खाना गृहस्थी देते हैं।
बाबा ने कहा निकाल तुम हद के
लेंगे उनके घर में, हम वो नहीं है।
बाबा ने कहा तुम बेहद के सन्यासी हो, काली बोला भी
चलते बाबा ने डबल कमाई होती है, कर्म भी करे योग भी, ये बाबा ने सिखाया।
बाबा ने कहा तुम बेहद के सन्यासी हो, सन्यासी तो काली बोला भी, अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए।
फिर ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर का यादगार है, अचलगढ़ है, ये बैठ के योग करने वालों का यादगार है। अचलगढ़ है, दिलवाड़ा मंदिर है, कुटिया बना हुआ है एक हर एक का,
और बैठेंगे फिर क्या पूरा विश्व घूमेंगे? नहीं, सब एक ही जगह बस एक, फिर समाधि बन जाएंगी फिर पूरी, फिर हमारी समाधि बन जाएंगी।
जो समय चल रहा है समाधि में जाने का ही समय, इसलिए पहले से प्रैक्टिस करनी है। समाधि मना हमको परम धाम जाना है परमानेंट, तो हमको तो उसी पर फोकस करना पड़ेगा।
लोग आपकी भक्त करेंगे, समाधि बैठ गई मना, अब ये चलो इनकी फिर परिक्रमा करो।
किसकी परिक्रमा?
हम जा योगी बन गए एकदम, फिर हमारी परिक्रमा करेंगे बाबा।
देखिए हम बैठे हैं, पूरा विश्व जिसको जो चाहिए अपने आप आएगा। जैसे कोई देवता है, मूर्ति है, तो मूर्ति किसी के पास जाती नहीं है, मूर्ति के पास सब आते हैं। अगर हमारी साधना ठीक है सब अपने आप इधर आएंगे, अनुभव करेंगे।
ओम शांति। बाबा ने कहा कि आप कौन हो? सहज राजयोगी हो, तो हमारा राजयोग सहज है। जैसे कहावत है जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो आपने घर के अंदर बैठ के तपस्या की वो तो पता नहीं चला, इसलिए लोगों को दिखना तो चाहिए कि हमने क्या किया। हम बाहर निकलेंगे तभी तो दुनिया हमको देखेंगी, तो
आपकी तपस्या सही नहीं इसलिए बाहर निकलना पड़ रहा है। तपस्या अगर सही है तो सब इधर आएंगे। मोर क्या, जो जानवर थे हिंसक जानवर, आके उनके चरणों चूमते थे आगे, जैसे नीलकंठ बैठा था तो बाहर नहीं गया, वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, और शेर आके उन नतमस्तक हो गया। जंगल कैसे आया?
देखो चमत्कार को नमस्कार तो होता ही है, लेकिन बाबा ने हमें ये बात नहीं सिखाई है। हमें प्रैक्टिकल अपने जीवन से दिखाना है, हमें चलता फिरता लाइट हाउस बनना है। हम रास्ते से चले और लोग उनको लगे कि हाँ यहाँ से कोई तपस्वी जा रहा है, न कि बैठकर हम किसी को साक्षात्कार करावे। और ये चमत्कार को नमस्कार बाबा ने नहीं बताया।
बाबा ने कहा अंत में तुम पहाड़ियों पर बैठेंगे, बैठे बैठे पूरे विश्व का साक्षात्कार होगा तुमको, तुम पूरे विश्व का विनाश देखोगे।
बाबा ने बोला चलता फिरता लाइट हाउस बनो, माइट हाउस बनो, म्यूजियम बनो। वो बाबा ने कहीं बोला नहीं जे तुम बैठा हुआ लाइट हाउस बनो।
चलते फिरते भी तो भी बन सकते, जब पहले बैठे बैठे बनेंगे, बैठे बैठे बने नहीं चलते फिरते क्या कद्दू अनुभव कराएंगे।
देखिए बाबा ने बोला सत्यता के साथ सभ्यता हो तो कद्दू छीलने का बात यहाँ नहीं होता है।
बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल बनाए हैं, जो चलते फिरते रहने से भी बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल रखा है, क्योंकि संकल्पों का जो स्पीड है उससे एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करने से चित्त स्थिर हो जाता है।
क्या पॉइंट था?
हमें योग करना है, लेकिन आज बाबा ने क्या बोला कि कर्म योग का महत्व है। भोजन बनाओ, बाबा की याद में भोजन करो तो तुम्हारे ताकत आएगी, लेकिन जब हम तो कर्म योगी में हम सफल नहीं होते तो फिर हमें जीवन में ताकत नहीं आती। तो हमारी कर्मणा सेवा में हमें नंबर वन लेना है।
जब भोजन भी करते तो एकाग्र होके ही करते हैं, बैठ के ही करते हैं, इधर उधर घूम के भोजन नहीं करा जाता। नहीं नहीं नहीं, हाँ तो बाबा की याद में बैठ के ही भोजन किया जाता, दृष्टि देके ही भोजन किया जाता, बाबा की याद में बैठकर एकाग्र होकर भोजन। हाँ
लेकिन जब
याद रूपी भोजन भी बैठ के ही करना है।
लेकिन जब भोजन का कब आपको उसका प्रभाव पड़ेगा, जब योगी योग युक्त तो भोजन बनाएगा तो आपके भोजन आप बैठ के करेंगे तभी आपका प्रभाव पड़ेगा।
भोजन योग युक्त बना हो और हम याद में बैठ के नहीं खाए तो हमें नुकसान कर सकता है, इसीलिए हमें याद में बैठ के ही खाना है। चलते चलते खाएंगे तो यहाँ अड़क जाएगा, बात करते करते खाएंगे तो यहाँ अटक जाएगा, फिर हमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और आबू है अब्बा का घर, भाई जी बोले थे ना कि चलते फिरते लाइट हाउस, आबू है अब्बा का घर, आबू से आबू को ही लाइट हाउस कहे हैं बाबा ने, इसीलिए भाई जी बोले थे उस बात को मैं खंडन कर रहा हूँ। आबू है अब्बा का घर, आबू ही लाइट हाउस बनना है और बनेगा।
जैसे हम खाना खा तो लिया, भोजन ले लिया, उसके बाद हम बैठे ही रहेंगे क्या? क्योंकि हमें उसको पचाना भी है ना, तो कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि फिर वो डाइजेस्ट नहीं तो खा, इसलिए तो पेट निकल आता है जो बैठे रहते,
बात
प्रॉब्लम होती है।
बात यहाँ पे है, हमने भोजन बाबा की याद में किया तो बुद्धि का सैर करने है हमें। बुद्धि से हम तीनों लोगों का सैर कर सकते हैं, सारे विश्व का चक्कर लगा सकते हैं, तो यही एक्सरसाइज है ना।
देखिए जब बीमार में पड़ जाते हैं डॉक्टर भी सलाह देते हैं, डॉक्टर को नेक्स्ट टू गॉड भी बोलते हैं और उनका बात भी एकदम गॉड की तरफ भी मान लेते हैं, और एक्सरसाइज करने के बोलते हैं, घूमने फिरने के लिए बोलते हैं, पैदल करने के लिए बोलते हैं। तो पैदल करते टाइम हम लोग की बाबा को याद करेंगे तो और भी चार गुना हमारा फायदा होगा। ऐसा बैठे बैठे शरीर जब बीमार हो जाएंगे अब कैसे बाबा को याद करेंगे? देखो सारे जितना सब बैठा हुआ है ना, सब फैटी हो गया, और उसका परिणाम क्या है? और डॉक्टर साहब को उसका गुनाह करना पड़ता है, इतना पढ़ाई करके उनका इलाज करना, उनको बाबा को याद करना था, इन शरीर में उसका हिसाब किताब निकाल रहे हैं।
हाँ ये जो आपने बात बताई तो सारी स्थूल की बात है, यहाँ चिंतन की बात है। बैठे बैठे चिंतन करना मन बुद्धि का विचरण है यहाँ, तो वो बैठे बैठे करना है, उसने स्थूल की तो बात ही नहीं है यहाँ। और डॉक्टर कहते हैं आधी बीमारियां आपको रेस्ट करने से खत्म हो जाएगी। रेस्ट तो करना अनिवार्य है,
नहीं
रेस्ट नहीं करेंगे तो आदमी को इन्फेक्शन हो जाएगा।
सारा दिन रेस्ट करेंगे तो सारा शरीर अकड़ जाएगा, फिर आप उसमें बिस्तरे में रहेंगे, बिस्तरे से उठेंगे ही नहीं, तो हमेशा बिस्तरे से उठना नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा
यहाँ तो स्थूल की बात नहीं,
थोड़ा रहेगा,
चर्चा का विषय हमारा सूक्ष्म की तरफ है, ये स्थूल का नहीं
है। विषय है कि भाई हमारा शरीर कब ठीक रहेगा, जब हम कर्म योगी बनेंगे तो हमारी सब कर्मेंद्रिया एकदम एक्टिव रहेगा। जब हमारी कर्मेंद्रिया एक्टिव रहेंगे तो हम योगी कहलाएंगे।
बाबा ने कहा है अगर आप लोगों की स्थिर स्थिति नहीं होगी, स्टेरियम स्टेज नहीं होगा, तो आपका साक्षात्कार कैसे होगा? हिल चलते रहेंगे तो भक्त लोगों को दिक्कत होगी।
देखिए जब हम चलते फिरते हैं तो कोई ना कोई चीज देखते हैं। बाबा ने उसका हर एक का एग्जांपल दिया है। जैसे आप कोई गोला देख रहे हो, ग्लोब देख रहे हो, तो वही सृष्टि भी ग्लोब है। कोई भी चीज हम देखते हैं तो अपने ज्ञान को उससे जोड़ करके चिंतन करते करते ही हम कर्म योग करते हैं, तो उससे ज्ञान भी इमर्ज रहता है और योग की स्थिति भी बनती है।
मैं एक अनुभव सुनाता हूँ। जब डायमंड हॉल में योग करा रहे थे, अभी
में वही है, वही टॉपिक बता रही हूँ बैठने के लिए। जब भी मैं डायमंड हॉल में योग करा तब जस्ट कल परसों सारे टीचर बहने बैठे, मैं बैठते ही एकदम परम धाम में पहुंच गए थे। मतलब बैठ के योग जो है परफेक्ट परफेक्ट लगता है,
बैठ के योग परफेक्ट लगता है।
हम शांति बैठ कर योग करना है, अनुभूति होता है, लेकिन आप सारा दिन योग में बैठ के बैठक योग नहीं कर सकते हैं। आपको सारे 24 घंटा आप बिताना है, 2 घंटा 4 घंटा आप बैठक योग कर सकते हैं, बाकी समय आपको निरंतर योग में कर्म योगी बनकर ही कर्म करना है।
63 जन्म का विकार है हमारे ऊपर, है ना, तो इसीलिए तो 24 घंटा क्या, तो मैं तो कहता हूँ 6 महीना तक बैठे बैठे करो तो भी कम है, क्योंकि क्योंकि
बाबा बोलते हैं और गीता में भी है, योगा कर्मसु कौशलम। इसीलिए हमको कर्मों में एफिशिएंसी लाना है। योग का जो प्रभाव है, हम कर्म में देखते हैं लोग कैसे कर्म कर रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं, हमारा प्रैक्टिकल जीवन में उतरना है। कर्म जो योग किया है कैसे एग्जिबिट करेंगे, हम योगी है, हम व्यवहार में आएंगे, चलते फिरते हम उसको दिखाएंगे। तभी जैसे बाबा बैडमिंटन खेलता था, बोला बाबा किसके साथ बैडमिंटन खेल रहे हो, उस समय याद कर रहे चलते फिरते बैडमिंटन खेलता, फिर पहाड़ी पे चलता, किसके साथ चल रहे हो, चलते फिरते योग सिखाया बाबा ने, ऐसे बैठ के नहीं।
पहले बाबा ने प्रैक्टिस करवाया तुम बैठ के करो तो चलते फिरते होगा। और कर्म कौशल जो गीता में जो लिखा है ना,
हाँ मैं
कर्म बोला,
बाबा ने दादियों को 14 साल जो कराया दिखाने के लिए नहीं करा, गुप्त कराया। 14 साल भट्टी गुप्त किया, फिर बाहर निकले दिखाने के लिए। पहले 14 साल बैठे बैठ के गुप्त।
कर्म में कौशल तभी आएगा जब हम बैठ के योग करेंगे, ऐसे नहीं। कर्म कौशल ने जो हाँ। बोला ना, जो गीता में लिखा है ना, तो कर्म में कौशलता तब आएगी जब हम बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, जीवन में परिवर्तन लेके, तभी हमारे कर्म से दिखेगा। डॉक्टर जब पेशेंट जब बीमार रहते तो डॉक्टर इंजेक्शन देता है, दवाई देता है, गोली देता है, पेशेंट खाता है तो सुधार होता है, तो चेहरा से दिखता है। तो हम योग करेंगे तो हमारे चेहरा से और कर्म में दिखेगा, ऐसे
दिखाने की जरूरत हो तो दिख ही जाएगा।
चलो
देखो, दूध से घी निकालने के लिए भले ही और सारी रात जमा रहता है, लेकिन मक्खन निकालने के उसको चलाना पड़ता है, उसमें रही डालनी पड़ती है, तब जाके मक्खन निकलेगा। चाहे वो सारी रात रखे, 10 दिन रखे, 10 साल रखे, घी नहीं निकलेगा जब तक उसके हिलाए।
हाँ, आपने सही बोला, लेकिन उसको पहले जमाना पड़ता है। तो पहले तो 12 घंटे बिठाया ना आपने, पहले तो 12 घंटे बिठाया ना, वो तो सबको पता मक्खन अंदर में है ही है, मक्खन अंदर ही है। इसी तरह से योग भट्टी में ईंट या ईंट को थपाया जाता है भट्टी में, तभी वो प्रत्यक्ष होती है। पहले तो वो क्या थी, चलती फिरती मिट्टी, बहती मिट्टी थी ना, उसको एकाग्र करके बिठाया गया, उसकी पक्का निखार हुआ, तो ही किसी को शफा देने के लिए मकान के रूप में प्रयोग की जा सकी।
देखिए, जड़ चीज का कभी कोई महत्व नहीं होता है, आत्मा चैतन्य है, ज्ञान चैतन्य है हमारा, तो चैतन्यता ही हमारी दिखेगी तभी लोगों को पता चलेगा, नहीं तो जड़ चीज है उसको क्या महत्व।
चलो लास्ट पॉइंट, फिर डिबेट पूरी हो रही है। लास्ट
बाबा ने बोला, आप
बैठे कहाँ तक बैठेंगे, आपको तो मलमूत्र भी त्याग करना पड़ता है, बाथरूम में जाके भी आपको नहीं, ये सभ्यता की ये है, ये इसमें कोई बाथरूम में भी जाके आपको बाबा को याद कर सकते हैं, बाबा बोला नहीं जे तुम बैठे हुए ये
करो। ओम शांति, ओम शांति। तो एक है बैठा हुआ योग, एक है चलता फिरता योग। बैठे हुए योग के भी बहुत सारी पॉइंट्स आप दोनों ग्रुप्स ने सुनाई, उसमें और दो तीन चीजें हैं। जब हम बैठा हुआ योग करते हैं तो हम ऑलरेडी एक चार्ज्ड एटमॉस्फेयर है उसमें जाके करते हैं, एक वातावरण ऐसा है एक जगह कि जहां जाके तो उस वातावरण की हमको मदद मिलती है, एक तो ये। दूसरा, बैठे हुए हम संगठित योग कर सकते हैं। बैठे हुए जब संगठित योग करते तो संगठित योग का अपना एक महत्व है, विश्व को सकाश देना या किसी एक क्षेत्र को सकाश देना है सब मिलकर, तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जब किसी एक स्थान पर जाते हैं तो वो स्थान के भी वाइब्रेशंस, दूसरा हम खुद पावरफुल हो रहे हैं और साथ में उस स्थान को भी हम पावरफुल कर सकते हैं। ये एक दूसरा पॉइंट है कि संगठित योग जब बैठ के करते हैं तो किसी विशेष स्थान को हम और अधिक पावरफुल बना सकते हैं बैठकर। और दूसरा, जो भारत में द्वापर से अब तक जो कुछ योग पद्धतियां है उसमें आसन का बहुत महत्व है, यम नियम आसन, अष्टांग योग जो है, पतंजलि का राजयोग, अष्टांग योग, उसमें 3 नंबर पे आसन का महत्व दिया हुआ है। तो आसन, पोश्चर, मेडिटेशन और पोश्चर, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। पोश्चर अगर कुछ रहा तो उससे माइंड कॉन्सेंट्रेट होने के लिए आसानी होती है, एक तो ये। दूसरा, 84 प्रकार के उन्होंने आसन बताए हैं पतंजलि ने, अलग अलग 84 प्रकार के, और कहा गया है कि भगवान शिव ने ये आसन सिखाए थे। वैसे तो सिखाए थे 84 लाख, परंतु उसमें से जो मुख्य आसन है वो 84 है, उसमें से मुख्य और 4 है, और उसमें आसन मतलब दो ही शब्द कहे कि जिसमें सहज हो ऐसा आसन, और आसन जयी अर्थात लंबा समय तक एक आसन पर रहे ताकि शरीर स्थिर हो जाए। उसमें फिर अलग अलग उन्होंने बताया, कोई लोग आंखें खोलकर, कोई आंखें बंद कर। तो आसन का बहुत महत्व है। तो सिटिंग योगा जो है, बैठकर किया हुआ योग, उसका बहुत ज्यादा महत्व है, एक तो ये। दूसरा, परंतु वास्तव में हमारा जो योग है वो कर्म योग है, हमारा जो योग है वो चलता फिरता योग है। बाबा ने ऐसा कभी नहीं कहा है कि तुम्हें खाली बैठ के करना है। या एक मुरली में तो ये भी कहा है कि बच्चे कहते हैं कि 8 घंटा योग, मतलब बेहद के याद को भी बच्चे हद में ला रहे हो, तो ये भी नहीं करना है। हमारा जो वास्तविक योग है वो बैठ के तो है ही है, परंतु वो प्रैक्टिस है, परंतु उसका एप्लीकेशन जो है वो है चलता फिरता, जो कि है निरंतर योगी। क्योंकि हमें कर्म करना है, कर्म में कुशलता लानी है। ऐसा नहीं कि सुबह अमृत वेला योग कर लिया, शाम को योग कर लिया और काम पूरा हुआ और सारे दिन भर बाबा से बुद्धि योग टूटा रहा। ऐसा कुछ करना है कि हाँ, परंतु हाँ, शक्तिशाली योग यदि रहेगा तो उसका प्रभाव दिनचर्या में भी पड़ेगा, और परंतु दिनचर्या में भी अलग से चलता फिरता भी योग हो। तो बैठा हुआ योग का भी बहुत अधिक महत्व है, तो चलता फिरता योग का भी बहुत अधिक महत्व है। हमको पूरा ही 24 घंटे किसी न किसी रीति से उस योग की अवस्था में रहना है। योग अर्थात बाबा ने कहा है, जो बच्चे मुझे 8 घंटा याद करते हैं वो मेरे सबसे अधिक सहयोगी बच्चे, साकार महावाक्य है। जो बच्चे मुझे 8 घंटा याद करते हैं वो मेरे सबसे अधिक सहयोगी बच्चे हैं। तो हमें कैसे भी करके, चाहे उसमें बैठना हो, सोना हो, उठना हो, जागना हो, कुछ भी हो, कैसे भी करके योग का चार्ट धीरे धीरे बढ़ाना है। तो डिबेट तो हमने की, डिबेट का लक्ष्य यही था कि हमारा थोड़ा चिंतन और चले, जो टॉपिक है, जो विषय है, उसके बारे में हम और सोचे और सोचे और सोचे, क्योंकि जब हम सोचते नहीं है चीजों के बारे में तो वो हमें समझ में नहीं आती है, और जब हम उसका गहराई से चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो ज्यादा समझ में आती है। तो उसी तरह एक है सिटिंग योगा, एक है मूविंग योगा। तो चलता फिरता योगी बनना ये भी बहुत जरूरी है, परंतु केवल ऐसा ही नहीं कि खाली चलते फिरते ही रहे और बैठने का अभ्यास ही नहीं है। हमको बैठने का भी अभ्यास चाहिए, लंबा समय एक जगह पर बैठकर शरीर को स्थिर, क्योंकि जिसका शरीर पर ही वश नहीं है वो मन को भी क्या वश कर सकेगा, वो बुद्धि को भी क्या वश में रख सकेगा। तो एक जो है संयम, देह के ऊपर भी हमारी जय हो, आसन जयी जिसको कहते हैं, तो शरीर को भी हम जब चाहे तब स्थिर कर सके, जब चाहे तुरंत कर्मयोग, इधर जा रहे सब कुछ किया, कभी सेवा कर रहे, कभी ये कर रहे, कभी वो कर रहे, और कह दिया बाबा ने कहा एक सेकंड में स्थिर हो जाओ, एक सेकंड में बैठ जाओ स्टैच्यू, तो पूरा शरीर एकदम स्थिर हो जाए, आत्मा पिन ड्रॉप साइलेंस, ये भी अभ्यास और वो भी अभ्यास, तो दोनों ही चीजें बहुत बहुत आवश्यक है। ठीक है, ओम शांति।